गृहस्थ के जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। सचमुच बड़ा मंगलमय है गृहस्थ का जीवन, मंगल धारण करें। इसके लिए एक आवश्यक काम है, कालेन धम्म श्रवणं। समय समय पर, उचित समय पर धर्म श्रवण करना चाहिए। पहले श्रुत ज्ञान तो हो, सुनेंगे ही नहीं तो कैसे समझेंगे धर्म क्या है। सुने, उस पर चिंतन करे, उसे ठीक समझ दिया तो धारण करे। तो सुनना बहुत कल्याणकारी है, लेकिन केवल सुन के ही रह जाए, इसलिए धर्म सुनने के लिए जाना है कि चलो कुछ समय समय पास हो जाएगा। अब उम्र बढ़ गई, कुछ काम वाम तो है नहीं, घर में बच्चे बहुत समय देते नहीं हमें, चलो वहीं चलें। लोग मिलेंगे, मेरे जैसे अनेक लोग यहाँ पहुँचे होंगे, वहाँ पर तो प्रवचन के बाद बैठ करके गपशप लाएंगे। अरे कुछ देर के लिए मनोरंजन ही हो जाएगा, कभी कभी मन में बहुत उदासी आती है ना, किसी बात को लेके उदासी आई, निराशा आई, हताशा आई, तो जरा धर्म की बात सुन ली तो जैसे अंधेरे में एक प्रकाश की किरण आ गई, कल्याण हो गया। इसलिए होना चाहिए। कभी कभी एक और पागलपन होता है, लोग देखें मैं धर्म सभा में आया हूँ और धर्म सभा में बड़ा रेगुलर आता हूँ, तो लोगों के मन पर मेरी इमेज, मेरी छाप ऐसी बड़ी, बड़ा धार्मिक है। देखो वहाँ गुरु महाराज का कोई प्रवचन था, वहाँ भी ये पहुँचा, वहाँ संत महाराज का था, वहाँ भी ये पहुँचा, वहाँ पंडित जी का था, वहाँ भी पहुँचा, बड़ा धार्मिक है ये छाप समाज में। और बात को लेकर प्रतिष्ठा है, पर साथ साथ ये प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो जब जाए धर्म सभा में और गुरु महाराज धर्म की चर्चा कर रहे हैं, कोई कोई बात गाते हैं, थोड़ा सा नाचते हैं, तो उनके साथ खूब ऐसा मगन हो कि बस खूब धर्म को समझ गया है, बड़ा आनंद ले रहा है धर्म में। लेकिन बस केवल चर्चा ही चर्चा हो, धर्म धारण नहीं किया, तो वो सारा धर्म श्रवण दिखावा हो गया, ढोंग हो गया। उससे बचना है। चर्चा ही चर्चा करे और धारण करे न कोई, अरे धर्म बिचारा क्या करे, सुख धारे ही होए। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, कहा किसी ने बहुत मीठा है। अब वो कहता है, वो समझदार आदमी है तो मीठा होगा ही, फिर भी कोई प्रश्न उठता है मीठा है कि नहीं है, तो वो समझाता है, देख इसमें शक्कर पड़ी है, चीनी पड़ी है, चीनी पड़ी है तो मीठा होगा ही। तो चिंतन करके भी देख लिया, जरूर मीठा है। अरे क्या काम आया, जब तक रसगुल्ला जबान पर नहीं रखा तब तक उस मिठास का हमें तो अनुभव नहीं हुआ। तो धारण करे, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई, तब नहीं होता। धारण करने से लाभ होता है। खूब समझदारी के साथ धर्म को सुनना चाहिए, खूब समझदारी के साथ ये भी समझना चाहिए कि ये बातें तो धर्म के सार की हैं और ये बातें निस्सार की हैं। कभी कभी निस्सार भी साथ जुड़ जाता है, और कोई बुरी बात नहीं है, उसका अपना लाभ है, फल पर छिलके हैं, फल को सुरक्षित रखते हैं, अच्छी बात है, पर हमारे लिए काम का तो फल है छिलका नहीं। अनाज पर छिलका है, फूस है, भूस है, अनाज हमारे काम का है, अनाज निकाल लिया, अब उस घूस फूस को थोड़ी, वो हमारे किस काम का, उसको फेंकेंगे। सार सार को गई लहे, थोथा दिए उड़ाए। थोथे की जरूरत थी, उतनी देर के लिए जरूरत थी, जब उसको संभाल के रखता है। मशाल के लिए डंडे की जरूरत थी, डंडे पर मशाल लगी होगी तो ऊंचा करके उससे प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा और हमको दूर दूर तक का रास्ता दिखाई देगा। उतना ही, मशाल पर अग्नि तो है नहीं, अग्नि शिखा है नहीं और खाली डंडा हाथ में है तो क्या काम आया। कोई पात्र में धर्म का अमृत दिया किसी ने, हर महापुरुष धर्म का अमृत देता है तो ही महापुरुष है, तो कहाँ देता, किसी पात्र में देगा। पात्र तो छाती से लगा लिया और उसमें जो अमृत है वो धीरे 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 पात्र जर्जरित होता गया, वो सारा का सारा अमृत बह गया, पात्र खाली है और चिपकाए हैं, चिपकाए हैं उसको, ये मेरा पात्र, ये मेरे महापुरुष का दिया हुआ पात्र, तुम्हारा पात्र खराब, मेरा पात्र अच्छा। अरे झगड़ रहे हैं, जैसा मेरा डंडा अच्छा तेरा डंडा खराब, प्रकाश नहीं है। उसी तरह से समझें कि ये निस्सार है, सार को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन सार ही खत्म हो जाए तो सपोर्ट किसको करेगा। तो बहुत समझदारी के साथ, अंदर का धर्म तो सबके लिए एक ही है, इस संप्रदाय का कि उस संप्रदाय का, इस देश का कि उस देश का, हर परंपरा में जो जो धार्मिक परंपराएं हैं, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, सार सब में एक ही है, शुद्ध है। ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न होते हैं, किसी की ऐसी दार्शनिक मान्यता, किसी की वैसी दार्शनिक मान्यता, किसी का ऐसा कर्मकांड, किसी का वैसा कर्मकांड, किसी का ऐसा व्रत उपवास, किसी का वैसा व्रत उपवास, किसी के इस तरह की जश्न मनाने की आदत, ये व्रत उपवास और ये तीज त्यौहार, अब सबके भिन्न भिन्न हैं, होते रहे ना, हमारा क्या बिगड़ता है। सार जो है भीतर का वो न छूट जाए, वो शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म तो एक है और छिलके हुए अनेक। अरे छिलके तो निस्सार हैं, तू सार धर्म का देख, सार को समझ ही नहीं पाएगा तो उसे ग्रहण कैसे करेगा, छिलकों में उलझा रह जाएगा, निस्सार में उलझा रह जाएगा। दोनों को अलग करके देखेगा, ये निस्सार है लेकिन सार को मदद करने के लिए इसका भी थोड़ा उपयोग है, लेकिन मुख्य तो ये सार है और इस सार को ग्रहण करना है। ये जीवन में उतरे, धर्म का सार जीवन में उतरे तो देखे जीवन ही बदल गया। अब क्योंकि सही बात समझता है भीतर भी बाहर भी, तो धर्म उतर गया जीवन में, भीतर बाहर एक सा और सरल स्वच्छ व्यवहार, कथने करने एक सी, यही धर्म का सार। जिसे धर्म का सार प्राप्त हो गया उसके कथनी और करने में भेद नहीं होगा, जैसा बोलेगा वैसा करेगा, जैसा करेगा वैसा बोलेगा, यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, भेद नहीं होगा, क्योंकि वो समझ गया बोलने को ये बात इन शब्दों में बोलनी चाहिए, लेकिन करने के लिए तो शुद्ध रूप से जैसी है वैसी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। धर्म श्रवण करना बहुत आवश्यक है, बड़ा मंगलमय है, पर लक्ष्य ये रहे कि धर्म श्रवण करके हम धर्म के सार को समझ जाएं और धर्म के सार को समझ करके उसे जीवन में उतारना शुरू कर लें, तो समय समय पर धर्म श्रवण करना ही चाहिए। और एक मंगल है, अनेक मंगल हैं गृहस्थ के जीवन में, खंति या कहें शांति, क्षमा। अरे जीवन में कितनी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब कोई बलवान आदमी हम पर अत्याचार करता है, हमें दुख देता है, तो भीतर से मन कहता है बहुत बलवान है भाई, हम क्या करें, सहना पड़ता है। भीतर से रोता है, मेरे पर अत्याचार हो रहा है, ये बड़ा दुर्जन है, कभी इसको भी इससे बलवान व्यक्ति मिल जाएगा तो जानेगा कैसे अत्याचार को सहना होता है। कभी मैं भी बड़ा बलवान हो जाऊंगा तो बदला लूंगा इससे। प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, लेकिन भीतर रो रहा है, मुझ पर अत्याचार हो रहा है, ये आदमी बड़ा अत्याचारी है रे। तो शांति नहीं है, दुर्बल आदमी की क्षमा क्षमा नहीं है, तो कायरता है, दुर्बलता है। सबल हो और फिर क्षमा करे तो गुण है, और नहीं तो रोते जाए सारे जीवन भर, गाली दी, मारा मुझे, हाय लिया सब लूट। और जब तक ये चिंतन चले, बैर सके ना छूट, भीतर ही भीतर बैर भाव ही बैर भाव, द्वेष ही द्वेष, दुर्भावना ही दुर्भावना, कितना व्याकुल रहता है, कितना व्याकुल रहता है। जिससे धर्म आ जाए, बलवान हो और तब क्षमा करता है, करुणा करता है। ये आदमी दुर्व्यवहार कर रहा है, जब कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो अपने मन में मैल जगा कर करता है, क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है। अरे बड़ा दुखिया रहा है, अरे ये जल रहा है, मैं इसको जला सकता हूं बदले में, मैं भी इसके साथ कटु व्यवहार कर सकता हूं। लेकिन धर्म है ना, भीतर कटु व्यवहार करने से क्या मिलेगा, वो तो खुद ही जल रहा है, वो जल रहा है, मुझ पर और पेट्रोल फेंको तो और जलेगा, उसे शीतल जल चाहिए। तो बलवान है और शीतल जल तो काम की बात हुई। अरे कमजोर है, कायर है और कहता है कि मैं क्या करूं, मैं उसको दुखी नहीं बनाना चाहता, इसलिए कि तू कमजोर है, बलवान हो और शांति हो। ये गृहस्थ का ही नहीं, सन्यासी का भी, सबका एक बहुत बड़ा सद्गुण है, शांति। भगवान के जीवन काल की एक घटना, यहीं बंबई के पास एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, सुपारक पत्तन। उस बहुत बड़े बंदरगाह से बहुत व्यापार होता था, निर्यात होता था, आयात होता था पश्चिमी देशों से, और पश्चिमी देशों से नहीं, पूर्वी देशों से भी। यहाँ से बड़ी बड़ी नौकाएं माल लेकर के ताम्रलिप्त जाती थी, लंका जाती थी, और वहाँ से भी साउथ ईस्ट एशिया में जगह जगह हर देश में बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था, तो बहुत धनी लोग थे। यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी किसी कारण से श्रावस्ती गया, व्यापार धंधे के दृष्टिकोण से गया, और वहां देखा कि संसार में बुद्ध प्रकट हुए हैं और उनका प्रवचन है। सुनते ही इतनी शीतलता, धर्म इतना स्पष्ट समझ में आया, और केवल समझ के ही नहीं रह गया, उन्होंने जैसा बताया वैसे अपने भीतर साधना करते करते करते, मैल दूर करते करते करते, निर्मल होते होते उच्च अवस्था पर पहुंच गया, संत हो गया। और जिसको धर्म मिल जाता है, धर्म की शांति मिल जाती है, धर्म का सुख मिल जाता है, धर्म का फल मिल जाता है, उससे रह नहीं जाता। यही पश्चि को, यही पश्चि को, अरे तू भी आकर देख, तू भी करके देख, तो सोचता है कि मैं जिस प्रदेश से आया हूँ वहाँ तो जो भगवान सिखा रहे हैं उसका नामो निशान नहीं, कभी रहा होगा, आज तो नामो निशान नहीं। उन लोगों को ये विद्या मिल जाए, उन लोगों को ये शुद्ध धर्म मिल जाए, अरे कितना कल्याण होगा, उनका कितना कल्याण होगा। तो भगवान से कहता है, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने देश जाकर के ये कल्याणी विद्या लोगों को सिखाऊं। भगवान कहता, नहीं रे, मैं जानता हूं तुम्हारे प्रदेश के लोग बहुत चंड स्वभाव के हैं, और उनको अपनी अपनी मान्यता के साथ, पुरानी मान्य के साथ इतना चिपकाव है कि उस मान्यता के विरुद्ध कोई एक शब्द कह दे तो चिड़चिड़ा उठते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। जैसे ही तुम धर्म की बात करनी शुरू करोगे, शुद्ध धर्म की बात शुरू करोगे, कि वे क्रोध से भर जाएंगे, तुम्हें गालियां देने लगेंगे। नहीं, तुम नहीं सिखा सकते। महाराज, उनको क्रोध आएगा और मुझे गालियां देंगे तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आप लोग कितने सज्जन हैं, और लोग नाराज हो जाए तो पत्थरों से पत्थर मारते हैं, आप तो केवल गालियां देके रह गए। और वो लोग पत्थर मारने लगे तब कहूंगा, आप लोग कितने सज्जन हैं, पत्थर ही मारते हैं, और कोई तो डंडे से मार मार करके कचूमर निकाल देते हैं, आप तो बहुत भले हैं, बहुत भले हैं। और लोग तो तलवार से काट देते हैं, जान ले लेते हैं, और सचमुच कोई तलवार लेके काटने आ जाए तब क्या करोगे, बहुत भले हैं आप, बहुत सज्जन हैं। ये सारा संसार कितना दुखमय है, कितने लोग व्याकुल होकर के आत्महत्या करते हैं, दुख से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करते हैं। बहुत पाप है आत्महत्या करना। आप मुझे आत्महत्या के दोष से बचाते हैं, आप मेरी हत्या कर रहे हैं, तो मुझको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, आप बहुत भले हैं, बहुत सज्जन हैं, क्षमता है, शांति है। भगवान ने कहा, जाओ अब तुम सिखा पाओगे। और वो पूर्ण इस प्रदेश का महान संत वहाँ से धर्म लेकर के आया और इतना फैलाया, इतना फैलाया, संत हो जाता है। क्षमा का भाव आता है तो संत हो जाता है। क्षमावंत धीरज लिए और सत्य दया संतोष, सुंदर ऐसे संतजन निर्भय निर्गत रोष। क्रोध नहीं आता उनको, निर्गत रोष, रोष दूर हो गया, क्रोध दूर हो गया, तो फिर वो व्यक्ति सही सही माने क्षमावान हुआ, अपना भी कल्याण करता है औरों का भी कल्याण करता है। अपने यहां एक पौराणिक घटना, पौराणिक कथा, कहा किसी ने, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जो छोटा है उसका स्वभाव है उत्पात ही करेगा, गड़बड़ी करेगा, लेकिन बड़ा क्षमा करेगा। अरे कहा रहीम हरि को घट्यो, कहा रहीम हरि को घट्यो, जब भृगु मारी लात। भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मार दी गुस्से के मारे, और वो मुस्कुराते रह गए। कहानी है, चाहे ऐतिहासिक कहानी हो चाहे पौराणिक कहानी हो, जहाँ धर्म है उसे स्वीकार करना चाहिए। धर्म की बात है ना कि कैसे क्षमावान बने, कैसे क्षमावान बने। बस धर्म आने लगा, धर्म आने लगा, जीवन में उतरना चाहिए, ऐसा धर्म जीवन में उतरना चाहिए। भगवान के जीवन काल की घटना होता ही है, जब किसी की बहुत प्रसिद्धि होती है, बहुत लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं, तो विरोधी लोग कोई न कोई प्रपंच करके, छल कपट करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो विरोधियों ने एक खूबसूरत लड़की को पढ़ा कर, सिखा कर, तैयार किया, समझा कर तैयार किया, रोज शाम को खूब अच्छा मेकअप करके भगवान के आश्रम में जाए और किसी पेड़ के नीचे सो जाए, और सुबह खुले बालों से, आज की रात तो श्रवण गौतम के साथ बिताई, आज की रात तो लोग देखें क्या हो गया इसे, क्या बोल रही है। और फिर 8-9 महीने के बाद पेट पर एक लकड़ी बांधी, उसे रस्सी से लपेटा, ऊपर कपड़ा डाला, और गालियां निकालती हुई आई। भगवान के शिष्य बैठे हैं, बसेंजित राजा बैठा है, अनाथ पिंडक बैठा है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, उनके बीच में गालियां निकाल रही, अरे मत मुंडे, तेरे होने वाले बच्चे के लिए तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरे शिष्यों को बोल ये कोई प्रबंध करें। भगवान मुस्कराते हैं, कत्वान कठमुदरंग इव गभिनिया, गर्भी का, गर्भिणी का ढोंग करके आई, चिंताय चिंचाय दुठ वचनंग जन काय मज्जे, लोगों के बीच में आई, तो संते न सोम विधि न जितवा मुनिंदो, तन तेज सा भवतु तेजय मंगलानी। कैसी शांति के साथ उन्होंने उस परिस्थिति का सामना किया, तो तो बुद्ध थे। अपने आप उसके पेट पर जो लकड़ी बंधी हुई थी, उसकी रस्सी ढीली हुई, लकड़ी गिर पड़ी, उनके लिए बहुत आसान था। पहले ही कह देते, कह रहे देखिए झूठ बोल रही है, पेट पर लकड़ी बांध रखी है इसने। प्रसेनजीत राजा को कहता तो उसको बंद करके अपराधनी बना करके हो सकता सिर उतार लेता। फिर बुद्ध बुद्ध नहीं होता, प्यार है, करुणा है, हमला होता है। जब बुद्ध बनते हैं तो हमला होता है, मार का हमला होता है तरह तरह से, कि ये कहीं बुद्ध न बन जाए। तो मारा तिरेक, मारा तिरेक अभियुंजित सबर तिंग, घोरंग पणाल बक मत मख दय खंग, खंती सुदंत विधिना जित वामुनंदो। मार से भी बढ़कर के एक ऐसा यक्ष मिला जिसने इतना कष्ट दिया, गुफा के बाहर चला जा, बाहर चला गया तो भीतर आ जा, भीतर आया तो बाहर चला जा, और वो शांति के साथ सामना करते हैं तो खंती सुदंत विधिना जित वामुनंदो। भगवान जीतते हैं तो शांति के बल पर जीतते हैं। सबके लिए आवश्यक है, बहुत मांगलिक है, बहुत कल्याणकारी है। धारण करें और अपना मंगल साधें, धारण करें और अपना मंगल साधें।